ओम शांति। हर साल 18 जनवरी विश्व शांति दिवस के रूप में मनाते हैं और ब्राह्मण बच्चे तो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने लिए हजारों की तादाद में मधुबन में आते हैं। आज भी बहुत भाई बहने पांडव भवन पहुंच गए हैं। शांति वन में भी बहुत भाई बहने हैं। विदेश के कई भाई बहने ज्ञान सरोवर में भी हैं। तो हजारों भाई बहन इसी लक्ष्य से पहुंचे हैं कि हम 18 जनवरी मधुबन में मनाएं। सब आंखें ताक कर देख रहे हैं कि 18 जनवरी बाबा के संग हम कैसे मनाएंगे। मधुबन की स्मृतियां ताजी हो जाती है। तो आज हमारे बीच अमीरचंद भाई हैं। अमीरचंद भाई को तो सभी जानते होंगे। जैसा नाम है अमीरचंद, आप ज्ञान रत्नों के भी धनी हैं, गुणों के भी धनी हैं। एक आदर्श अगर भाई कहें, पूर्ण रूप से समर्पित भाई कहें, तो अमीरचंद भाई एक उदाहरण है। आप चंडीगढ़ में रहते हैं और पूरा पंजाब जोन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये जितने भी स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स, आप सबका प्रशासन करते हैं, निर्देशन करते हैं और 18 जनवरी पर हमेशा मधुबन में होते हैं। तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया क्योंकि आप ब्रह्मा बाबा के बहुत करीब थे। कैसे बाबा ने इनको समर्पित किया, कैसे बाबा ने इनको क्या आज्ञाएं दी, कैसे पंजाब की सेवा इतना वृद्धि को पाई, दादी चंद्रमणि के साथ, अचल बहन जी के साथ आप कैसे बाबा की बेहद सेवाएं करते रहे, और अभी तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज हमारे बीच हैं और हम अमीरचंद भाई से निवेदन करेंगे कि शुरू से लेकर ब्रह्मा बाबा के संग के जो भी संस्मरण हैं वो अवश्य हमें सार रूप में एक घंटे के अंदर बताएं। वैसे तो बहुत होंगे लेकिन फिर भी एक घंटे के अंदर 7 से 8 बजे तक हम इनसे सुनेंगे और हम पहुंच जाएंगे उन्हीं दिनों में जबकि साकार में ब्रह्मा बाबा थे। ओम शांति।
ओम शांति।
वन मिनट, डबल फॉरेनर्स प्लीज पुट ऑन योर हेडफोन्स।
कल मुझे अचानक ही आदरणीय शीलू बहन जी का फोन आया। मैं 3 दिन के लिए गांधीधाम, कुछ प्रोग्राम थे वहां पर गया हुआ था, रात ही लौटा 7:45 बजे। तो आपका संदेश, आपने बात की तो मेरा प्रोग्राम तो पहले से ही था कि आज मैंने पांडव भवन में ही बहुत करके 17 रात को ऐसा संकल्प है कि मैं यहाँ रात को रहूं, इसलिए आना ही था यहाँ पर। इन्होंने ये भी एक गोल्डन चांस दे दिया आप सबसे मिलने का, ये भी अच्छी बात है। मैंने कहा नहीं, जरूर जो भी आप सेवा कहेंगे। तो जब से इन्होंने फोन किया तब से ही लेकर के मैंने देखा कि इनके फोन से मेरे में काफी परिवर्तन आ गया। मैं सब कुछ कर रहा था। सुबह को हम वहां निर्वैर भाई के साथ थे, दिन में हॉस्पिटल में थे, पर मैंने देखा कि जो उन्होंने ये सेवा का मुझे संकल्प दिया तो मैं यहां सब कुछ करता हुआ भी उन्हीं दिनों की यादों में खो गया। क्योंकि किसी को कुछ सुनाना है तो जरूर है कि वो अंदर तो है पर उसको मर्ज और इमर्ज की बात है उसको फिर से सुनाना। तो मुझे ये यहाँ का पांडवों तो नजर ही नहीं आता था, ये आज का जो पांडव भवन हम देखते हैं ओम शांति भवन और सुखधाम और क्या क्या और फिर ज्ञान शोर फिर ओम शांति भवन नीचे शांति वन, क्या देखिए क्या विस्तार है। और उस समय का मधुबन '58-'59 का मधुबन आप वो विजुअलाइज भी कर पाएंगे कि नहीं, मुझे ये पता नहीं कि कितना एक छोटा सा जैसे एक फैमिली हाउस होता है, जैसे हम लोग कोई शहर में जॉब करने के लिए आ जाए और फिर अपने गांव में जाए। मैं ऐसे मैंने किया है लाइफ में, मेरी जब पहले पहले जॉब लगी थी तो वो किसी और जगह लगी थी मगर पेरेंट्स मेरे गांव में रहते थे, फिर मैं बीच बीच में वहां जाता था गांव में। तो ऐसे ही आप समझिए कि जैसे ये उस ढंग का फैमिली हाउस की तरह था उस समय का मधुबन। और मधुबन में आने से पहले, क्योंकि उन दिनों में ये कंडीशन जो आजकल हम लगाते हैं कि एक साल कम से कम ज्ञान योग की धारणा में हो तो बाबा से आके मिले, उन दिनों में ये कंडीशन नहीं थी। रादर कोई समाचार बाबा को बहने लिखती थी ना कि ये फलां फलां अभी आ रहा है, कोर्स कर रहा है, क्लास में आने लग गया है, निश्चय बुद्धि है, बाबा का बच्चा है, ऐसे समाचार लिखती थी उन दिनों में पोस्ट से। तो बाबा लिखता था निश्चय बुद्धि है तो वहां क्यों बैठा हुआ है। इतनी बड़ी बात आपने उनको सुनाई और आप कहती है निश्चय है कि भगवान आकर के पढ़ा रहा है, भगवान आ गया है, नई सृष्टि का निर्माण हो रहा है, भगवान आ गया है, और वो मिलने के लिए ही नहीं आए, वो वहां ही बैठा हुआ है। निश्चय बुद्धि का क्या मायना। एक बार बाबा ने कहा अगर पैसे की कमी हो टिकट नहीं होना तो ट्रेन में बैठ जाओ, कोई पूछे को भगवान से मिलने जा रहे हैं। इतना नशा जैसे कि अदर पे कि हम किससे मिलने जा रहे हैं, कौन है वो। ऐसा बाबा उस समय की जो बाबा की संकल्प थे बच्चों के लिए। तो हम जब आए वहां पर 58 के एंड में, मैं करनाल हरियाणा में, मनोहर दादी हमारी उस समय सेवा का संभालती थी, एक और दादी थी, छोटी बहनें तो उन दिनों में होती नहीं थी, वो तो अभी आती थी घरों से सेंटरों पर। ये जो दादियां जिन्होंने बाबा की पालना ली थी 14 वर्ष तक, वही सेवा केंद्रों पर बाबा ने भेजा था उनको। तो मनोहर दादी हमारी टीचर थी मगर वो टीचर भी हमारी बहुत स्ट्रांग थी। आजकल की टीचर थोड़ी सी नरम दिल है, हमारी टीचर बहुत, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग, उन दिनों फाउंडेशन की बात थी। क्योंकि मेरा ऐसा मान्यता है, अंदर विश्वास है मेरा कि साकार बाबा के 18 जनवरी '69 को जब अव्यक्त हुए उससे पहले का सारा पीरियड मैं इस विद्यालय की या नई सृष्टि की फाउंडेशन मानता हूं। बाद में सेवाओं का विस्तार होता चला गया, बिल्डिंग बनती चली गई, एक मंजिल दो मंजिल और मंजिलें बनती चली जा रही हैं, मगर उन दिनों में जो कार्य साकार माध्यम से हुआ फाउंडेशन का काम, हमारे नियम मर्यादाओं में कंप्रोमाइज का सवाल ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हमें कुछ ये समझ ही नहीं थी उन दिनों में कि ये करना है तो करना है बस। जिसे बाबा ने एक मुरली चलाई थी, नॉट और डॉट अव्यक्त बाबा ने भी, ये नहीं करना ये करना है, बस नो कॉम्प्रोमाइज, कुछ नहीं। हाँ कभी कभी बाबा साकार में, जैसे अभी आपने बीच में सुना होगा कि जो आर्मी में है या कुछ ऐसे बच्चे हैं, तो उनके लिए बाबा लिटल लिटल रिलैक्सेशन बाबा का, जैसे कि कभी वाणी में आता है, मगर अदरवाइज नो, क्योंकि वो फाउंडेशन था एकदम। और फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उतनी आगे बात बढ़ेगी। तो जब मैं 58 के दिसंबर में मेरा आना हुआ और मई 59 में बाबा से मिलने के लिए यहाँ पांडवन में मैं आया पहली बार, अगर वो जो मेरे 4-5 मास का पीरियड था मेरा, उसमें इतना स्ट्रांग फाउंडेशन वहीं बन गया था। क्योंकि हमारी टीचर, मैंने कहा ना, कोई इतनी स्ट्रांग थी कि कोई ऑप्शनल नहीं होता था हमारे लिए, चॉइस नहीं थी। अभी मैं, मेरा ख्याल है कि 10-15 दिन का विद्यार्थी था, तो वहां पर 1 घंटा मुरली से पहले योग होता है और 1 घंटा मुरली लगभग होती है सेंटरों पर। तो एक बार मैं योग से के शुरू हो गया था तो 5-10 मिनट लेट पहुंचा होगा। तो मुरली के बाद मेरी टीचर कहती है मुझे बुला करके, स्कूल पढ़े हो? मैं कह जी हाँ। कॉलेज पढ़े हो? पढ़ा हूँ। पहले क्लास में टीचर आती है पहले स्टूडेंट आते हैं? मैं कह जी पहले तो स्टूडेंट आते हैं। कहती मैं तो पहले आ जाई थी। तो वो जो उन्होंने जो पालना थी, पालना है वो, कि 5 से 6 अगर योग होता है मॉर्निंग को मुरली से पहले, तो हमें 5 मिनट 5 से पहले पहुंचना है। हम लोग के घरों से जब आते थे तो हमारा सेंटर थोड़ा सिटी के बाहर कॉर्नर पर था, दूर से हमें सेंटर की लाइट दिखाई देती थी। हम देखते थे कहीं रेड लाइट तो नहीं हो गई है, रेड लाइट होगी माना योग शुरू हो गया। हम लोगों को पहले पहुंचना है। और जैसे आज का हमारा नियम है, हमारी टीचर इतनी स्ट्रांग थी जिन्होंने बाबा से मिलने से पहले हमारी तैयारी की, तो अब जैसे आज कल योग हम करते हैं, एक तो जब कोई मर्जी आ जाए और दूसरा जैसे कोई मर्जी करे, आजकल का योग ये है, उस समय पर ऐसा नहीं था। योग में भी हरे को विधि पूर्वक बैठना होता था, आंखें खोल के सीधा चौकड़ी लगा के जमीन पर, कुर्सियां सोफे तो होते ही नहीं थे, सीधे बैठना होता था। और उसकी विशेषता ये होती थी कि बीच बीच में हमारी टीचर मुरली से पहले किसी को भी कहती थी, इधर आओ और अपने योग का अनुभव सुनाओ, आपने 1 घंटा बैठ करके क्या क्या थॉट्स थे, आप कहाँ थे, योग में कहीं गए थे या यहीं थे आप, ये हमारा बीच बीच में टेस्ट होता था। तो हमें बहुत तैयार रहना पड़ता था उसके लिए, अटेंशन से बैठना होता था, एकदम अलर्टनेस से। दूसरा, उन्होंने हमारी ये पूर्व तैयारी बाबा से मिलने के लिए की, जो भी बहुत विचित्र है, वो भी आजकल बहुत कम भाई बहने हैं जो वो मेहनत कर पाए। क्योंकि मैं उस समय लौकिक जॉब करता था, कुछ कारण थे, तो मैं ये कहते थे आप इवनिंग को, मैं 5 बजे ऑफिस बंद होता था, 5:30-6 में सेंटर पर पहुंच जाता था, तो एक मुरली मेरे हाथ में दे देते थे कि इस मुरली के इसमें ज्ञान के पॉइंट कौन से हैं, योग के कौन से हैं, धारणा के कौन से हैं और सेवा के कौन से हैं। 4 सब्जेक्ट्स हर मुरली में आपको मिलेंगे, आपने उनको पढ़ना है, मार्क करना है साइड में, और 4 नोटबुक दे दी कापियां के, ज्ञान के पॉइंट इसमें, योग के इसमें, धारणा के इसमें, सेवा के इसमें। अब आप देख लीजिए, मुझे 2 घंटा लगता था टाइम, पहले मुरली पढ़नी और उन दिनों की मुरली और आज की मुरली में बड़ा फर्क है। आज तो हेडिंग भी होता है, प्रश्न उत्तर भी होता है, धारणा के लिए पॉइंट्स होते हैं, वरदान होता है, स्लोगन होता है। उन दिनों में नहीं, कुछ नहीं होता था। लिथो की हुई कापी होती थी और पढ़ना भी कई दफा मुश्किल होता था। और उसमें से आपने चारों टॉपिक सब्जेक्ट्स के पॉइंट्स निकालने हैं। उससे मैं ये आपको इसलिए बात सुना रहा हूं कि वो जो मैं मुरलियां पढ़ता था, क्योंकि ध्यान से पढ़नी है, इसमें कौन से ज्ञान के पॉइंट है, कौन से योग के पॉइंट्स हैं, तो मेरा ध्यान जाता था कि अंदर बहने तो दादियां तो कहती थी कि ये शिव बाबा है, मेरा भी विश्वास था कि ये भगवान के महावाक्य है। जिसके द्वारा ये महावो तो निराकार है, मगर जिसके द्वारा ये महावाक्य उच्चारण किए जा रहे हैं वो भी बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। निराकार बोल रहा है ब्रह्मा के मुख का आधार लेकर के, फेस तो ब्रह्मा को करना पड़ेगा ना, निराकार तो निराकार है। तो मैं देखता था कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे शास्त्र ग्रंथों से मेल खाए, कुछ नहीं। और जो कि उन दिनों में जो 59 में जो लोगों की धारणाएं थी, खासतौर में जिस हिंदू धर्म कहते हैं, जो उनकी बिलीफ सिस्टम थे, वो आज के 60 साल पहले वेरी स्ट्रांग थे। इसलिए वो विरोध करने लगे थे, शुरू में बड़ा विरोध हुआ। सर्वव्यापी का सिद्धांत है, गीता का, भगवान का सिद्धांत है, पतित पावनी गंगा का सिद्धांत, कितने हर चीज में ही बाबा कह रहे हैं ये। तो उसको मैं पढ़ता था जब, और लिखना होता था मैंने, मैं कहता था ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, देहदारी किसकी हिम्मत ही नहीं। और फिर पवित्रता की बात पर, अभी भी आप देखेंगे कई मुरलियां जो पवित्रता पर बाबा ने चलाई हुई हैं, व्यक्त की या व्यक्त की, लोगों की जो उस समय के सिद्धांत हैं आज भी लोगों के हैं, वो तो बिल्कुल ही बात ही नहीं है, लोगों को समझ में ही नहीं आई। इसलिए बात में हमें दादियों ने भी सुनाया कि ये एक पॉइंट ऐसी थी, बाकी तो चलो वो थी भी शास्त्र ग्रंथों के बारे या और चीजों के बारे, पर ये तो लाइफ के बारे में ना, जो चीज चली आ रही है, लोगों को बाबा ने जब ये शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा बात कही पवित्रता की, संपूर्ण पवित्रता की, समझ ही नहीं आई कहीं, समझ ही नहीं। खास तौर पर जो माताएं बहनें थोड़ी जो युगल थे या उस ढंग से जो बड़ी उम्र के थे, वो जब आए बाबा के पास तो वो कहें बाबा क्या बोल रहा है, ये बाबा क्या कह रहा है। कुमार हैं, कुमारी हैं, वो ठीक है, मगर गृहस्थ जीवन में भी पवित्रता, समझ ही नहीं आई किसी को ये बात, ये क्या कहते। इससे ये है कि इस जो चीज प्रचलित है, जो लोग वर्षों से लेकर के, बल्कि द्वापर से लेकर के समझो के, अभी बाबा ने सुनाया, इतने वर्षों से जन्म जन्मांतर जैसे वही संस्कार काम कर रहा है, बच्चे पैदा करने हैं, विकार है, ये चीजें चलो लिमिटेड हो सकता है। इसलिए तो बाबा को जब शिव बाबा ने ज्ञान दिया और बाबा ने वहां पर हैदराबाद सिंध में ये शुरू हुआ, आपने सुना होगा, तो सबसे बड़ा तो इसी बात का ही विरोध हुआ, समझ ही नहीं आई। वहां के भी जो बड़े बड़े लोग थे बाबा के पास, जो मुखी कहते थे उनको सिंध के, बाबा से आकर के रिक्वेस्ट किया, बाकी ये सारी बातें ठीक है, पर बाबा ये जो चीज है ना, इसके लिए आप एक लिमिट फिक्स कर दो, एक बच्चा दो बच्चा, चलो भाई उसके बाद। बाबा कहता है बच्चे ये तो मैं तो कहता ही नहीं, मैं तो खुद गृहस्थी, मैंने बच्चे पैदा किए, ये कौन कह रहा है। इसलिए ये जो अंदर में माध्यम तो वही है ना, चैलेंजेस को फेस किसने किया, सारे विरोध का सामना किसने किया, एक बाबा। कितनी आप ये अंदाजा लगाइए, आज हम कितने भाई बहने हैं जो इसलिए दूसरों को देख के चल रहे हैं, कितने हैं? अच्छा हमारी दादियां हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे क्लास में इतने भाई बहने पहले से आ रहे हैं, हम देखते हैं अभी देखेंगे इतने 20-25 हजार बाबा के सामने बैठे हैं, हमारे 10 हजार ब्रांचेस हैं, हमारे 140 देशों में काम हो रहा है, हम वो कह करके जैसे हमारा सिर ऊंचा हो जाता है, है? हमें याद है जब मैं पहली बार आया था तो उन दिनों में तो कोई प्रदर्शनी नहीं थी, कोई किताबें नहीं थी, लिटरेचर नहीं था, कुछ नहीं था। एक शिव जयंती का त्योहार हम मनाते थे सारे साल में एक, और उसके लिए हम हैंडबिल छुपाते थे। पहली शिवरात्रि जब आई तो मैं, मुझे बहन जी कहते हैं उसके लिए हैंडबिल छुपवाने हैं, मैटर बनाया हम लोगों ने, नीचे हमने लिखा कि हमारे भारत देश में 11 ब्रांचेस हैं, हम छोटे नहीं हैं, हमारी नेशनल जो है ये संस्था है कि 11 ब्रांचेस थी उसमें, और सारे एड्रेस हम छाप देते थे पर्चे में। तो आप देखिए कि क्या उस समय पर जैसे कि और कहां से कहां पहुंचना। एक बार बाबा ने मुरली में कहा, अरे बच्चे देखना 108 ब्रांचेस हो जाएंगी जल्दी से। हम बड़े हंसे अंदर से, बाबा 108 कहता है या तो एक ब्रांचरी खुलती है, एक सेवा केंद्र जो लिया वो भी लोग कहते बेकार खाली कर आगे चलो, कोई टिकने नहीं देता है, और दूसरी सेवा केंद्र खोल रहा है क्या। पर बाबा को नशा था। देखो मुरलियों में आप आज भी सुनते हो विदेश में जाएंगे, बच्चियां कहां, ये मेरा काम विदेशों में जाएगा, सब जगह बाबा ने, क्या बाबा का विजन था, शिव बाबा कैसे कह रहा था उसको देखो। इसलिए जो है वो जो मेरी 5-6 महीने की प्रिपरेशन हुई, तैयारी हुई, तब मैं बाबा के पास आया। और उन दिनों की जो आने की यात्रा होती थी वो भी कोई साधारण नहीं थी, आजकल नहीं है जैसे कितनी ट्रेन हवाई जहाज कितने साधन है हमें फास्ट पहुंचा देते हैं। उन दिनों में तो बड़े आराम से बैठ के आना होता था, छोटी लाइन की गाड़ी होती थी, कोयले का इंजन होता था, जब हम यहां स्टेशन पर पहुंचते थे हमारी शक्ल ही बदली होती थी। और आज ट्रेन लेती है टाइम 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे, तब 23-24 घंटे कम से कम ट्रेन टाइम लेती थी। और जब हम पहुंच गए यहां पर आए, कितना अंदर से हमें कहां जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, क्योंकि माइंड में तो ज्ञान की तो पूरी अच्छी तरीके से धारणा हो चुकी थी। फिर यहां दोपहर के लगभग पहुंचते थे, मुझे याद है, आकर के फ्रेश होकर के ये, और फिर बाबा से मिलते थे शाम के समय पर बहुत करके। और बाबा का रूम जो है, अभी आप जो बाबा का कमरा देखते हैं इसे आधा था, आधे में बाबा का वॉशरूम था, छोटा सा था, एक बाबा का बेड लगा हुआ और गद्दी जैसे कि अभी भी लगी हुई है, इतना थोड़ा सा पोर्शन था जिसमें आगे बहनें बैठती हैं, वो था। वहां पर हम आकर के बैठ के, और पार्टी कितनी बड़ी होती थी, आजकल तो एक एक सेंटर से कितनी बड़ी पार्टी होती है, तब पार्टी कितने की होती थी, चार पांच से ज्यादा आ जाए तो कहेंगे बड़ी पार्टी आ रही है। और वो भी बहने एक को भी लेके आती थी, कारण क्या था कि बाबा की इतनी पालना ली हुई थी दादियों ने कि बाबा का खिंचाव होता था। बाबा ने भेज तो दिया जाओ जाओ सेवा के लिए, पर वहां भी मौका देखती थी कि हम बाबा के पास जाएं, तो वो एक भी तैयार हो जाता था ना तो उसको लेके आ जाती थी, ताकि बाबा कहेगा पड्डा पड़ के आई। कंडीशन ये होती थी कि किसी ऐसे नहीं आ सकती थी कोई भी बाबा से मिलने के लिए, तो फिर एक दो भी तैयार हो जाता था तो उसको लेके आ जाती थी। तो इसलिए थोड़े थोड़े आते थे, दो दो चार चार आते थे। और हमारा जब मैं आया तो सुत क्लास हमारा कहाँ होता था, आप लोग अभी अंदर जाने देंगे का ये नहीं जाने देंगे, अंदर जो छोटा सा है ये सारा ओम शांति भवन तो छोड़ो, ज्ञान सोवर शांति बन ये तो भूल जाओ, ये हमारा हिस्ट्री आल भी भूल जाओ, मेडिटेशन आल भी भूल जाओ, ओम शांति भवन तो था ही नहीं। अंदर एक बिल्कुल पुराना हाउस है, किचन भी पीछे वाला भूल जाओ, जहां हमारा टेलीफोन एक्सचेंज है ना अभी अंदर, वो किचन था, वो वहां खाना बनता था और हम सामने उसके बैठ के पत्थरों पर पत्थर आगे रखे होते थे, बाबा के गोल्डन टेबल उसमें बैठ के खाना खाते थे। कितना वो छोटा सा, एकदम छोटा अंदर का पोर्शन, उसके बाहर बीच में गली है, अभी भी छोटी सी गली है जो किचन और उसके पहले अंदर, वो ओल्ड हाउस है, उसमें भी अभी मॉडिफिकेशन हो गई है अंदर बहुत सारी। तो उसके अंदर एक हाल है छोटा सा, जहां पर यीशु दादी का ऑफिस था, इधर मम्मा का रूम था जिसमें दादी मीटिंग रूम बना दिया, बड़ा बना दिया, डबल है, मम्मा का कमरा बहुत छोटा सा था। तो उसके पीछे दरवाजा था जो बाबा के कमरे में था, और वो जो क्लासरूम था उसमें 40-50 भी मुश्किल से बैठते थे, आगे तीन लाइनें माताओं बहनों की, पीछे तीन चार लाइनें भाइयों की बस। एक बार मधुबन निवासी मिला के टोटल 40 के लगभग थे पार्टियां मिला के, और मुरली के नीचे लिखा था कि सीजन फुल चल रहा है, और हम लोग जो वाणी दित्तों की होती थी वो हिंदी वाला कोई आता था तो कहते थे अच्छा आप लिखो, आप बाबा को सिंधी में लिखती थी बहने, तो एक बार हम लोगों को भी चांस मिला कि मुरली लिखो, उन लिथो की और लिखनी उठती थी, फिर उसको ऐसे घुमा के प्रिंट निकालते थे, तो जो लिखता था ना वो अपना याद प्यार भी नीचे लिख देता था, मीरचंद भाई का याद प्यार स्वीकार करना, ऑल इंडिया में याद प्यार चला गया उन दिनों में, ये मोबाइल सिस्टम होता था, आजकल तो कई सिस्टम है ना, उस समय पर अपना याद प्यार मुरली लिखने वाला लिख देता था। और इतनी थोड़ी संख्या में आप देखो बाबा ऐसे बैठ के मुरली चलाता था जैसे सारे विश्व को बाबा देख रहा है सामने, बाबा के सामने ये 35-40 नहीं है, जहां सारी आत्माएं विश्व को बाबा इमर्ज करता था अपने सामने, बेहद में जैसे बाबा बैठता था, क्योंकि बाबा कौन, उसके अंदर कौन आता था, निराकार, हमें तो साकार दिखाई देता था ना, मगर निराकार आकर के बोल रहा है और सब बच्चों को जैसे के बच्चों का आह्वान कर रहा है और ऐसी ऐसी बातें सुना रहा है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, सारा प्लानिंग बाबा के मुरली में हम सुनते थे। तो हम उस दिन तैयार होकर के जैसे बाबा के वहां बैठ गए, जा करके चार पांच थे हम लोग, पांच थे मेरा कर हमारी टीचर मिला करके हम ऐसे बैठ गए। तो बाबा मम्मा के कम मम्मा बाबा को लेके साथ आके बैठा, बाबा बैठा सामने हमारे, क्या बाबा को बुद्धि में ज्ञान तो था, मुरलियों का ध्यान भी किया हुआ था, पर बाबा को सामने आके बैठ के देखा ना, जैसे बाबा ने दृष्टि दी, जैसे दृष्टि कुछ और ही थी। आज उस तक जिंदगी में कभी मैंने किसी की नैनों में इतना प्यार देखा ही नहीं था। स्नेह क्या होता है, स्नेह का स्वरूप नैनों से कैसे नजर आता है ये अनुभव ही नहीं था। जैसे कोई अपनेपन की फीलिंग अभी भी हम देखें ना, जैसे आप देखो जब आप कहीं जा रहे हैं बाजार में हैं, कई लोग गुजर रहे हैं आ जा रहे हैं, आपको अपना कोई नजर आता है जिसको आप जानते पहचानते हैं, ये रिश्तेदारी है संबंध है, आप उसको देखते हैं तो क्या होता है, आपके मन की फीलिंग में चेंज आता है ना। आपको कहता थोड़ा कि आप मुस्कुराओ, उसको देख के बाद ये कहता तो कोई कहता थोड़ा कि आंखें गोल गोल करो, मगर आपकी आंखें कैसे हो जाती जिसको आप अपना समझते हो। प्यार कोई पैदा नहीं किया जाता, प्यार स्वतः पैदा होता है, जहां स्नेह है अपनापन है ना, ऐसे हमने बाबा को देखा। हम लोगों को तो ज्ञान था अंदर, बाबा को जैसे मेरे, अभी तो हम मुरली के पीछे पड़ते हैं ना, कल्प के बिछड़े हुए हैं, अंग्रेजी में अच्छा ट्रांसलेशन करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम लोग सिक्की लदेल करते हैं ना, वो लगते हैं लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड, मुझे बड़ी अच्छा लगा अंग्रेजी का ट्रांसलेशन, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड, सिक्की लदे। तो वो प्रैक्टिकली हमने देखा, जैसे बाबा के नैनों में, जैसे कि ये मेरे बच्चे, बिछड़े हुए बच्चे, कल पहले वाले, ये वही है। ऐसे बाबा ने जैसे आके बैठा और बाबा ने दृष्टि दी, तो जैसे बाबा ने हमारी तरफ दृष्टि दी ना, कंट्रोल करना ही मुश्किल होता है। जैसे को बहुत प्यार होता है ना, बिछड़ा हुआ को मिलता है, बिछड़ा हुआ को मिले तो कंट्रोल करना ही मुश्किल होता है। बाबा आके ऐसे दृष्टि दे रहा है और मेरे सामने उठ उठ करके आकर कैसे बाबा को पकड़ रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं, हाँ आओ बच्चे आओ, आ गए ना घर में, आ गए ना बाबा के पास, आ गए ना। जैसे उस इतना स्नेह प्यार इमर्ज होता था कि कोई उस को ये सोचता था कि मेरा पति भी साथ बैठा हुआ है और ये तो फिर भी मेल है। जैसे कि बाबा की गोद में, जैसे दूरी दूर रह ही नहीं सकते थे, इतना आकर्षण खिंचाव होता था बाबा का। ये मेरा बाबा, जैसे अभी जानकी दादी रोज डायमंड हॉल में क्या कहते, मेरा बाबा, मीठा बाबा। एक्चुअली वो अंदर भावना तो उनकी है कि बाबा का प्यार इमर्ज हो इनके अंदर। ये कह तो रहे हैं मेरा बाबा, पर वो स्टेज इनकी बने जहां मेरापन होता है। तो वो हमने उस समय सब जैसे के थोड़े से ही थे, पापा बहुत प्यार जैसे करते, इतना अनुभव उस अदर हो रहा था जैसे कि सचमुच ही हम बहुत समय के बिछड़े हुए बाबा से मिल रहे। जिस जो स्टेज हम कहते हैं पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा, ये अनुभूति होती थी, अनुभूति अनुभव होता था ऐसे, जैसे बाबा से मिलने से ना, जैसे वो चीज का कभी अनुभव पहले हुआ ही नहीं था जिंदगी में। चाहे लौकिक में भी माँ बाप की पालना ली है, लौकिक माँ बाप भी बच्चों से प्यार बहुत करते हैं, गले भी लगते हैं। जैसे हमारा आजकल अभी भी पंजाब में कई जगह सिस्टम है, जब भाई बहन भी मिलते हैं ना या माँ बाप मिलते हैं तो उनको गले लगा के मिलते हैं। अभी भी मम्मा अपनी बड़ी सिस्टर है, मैं उनके पास जाऊंगा ना, उठ के आएगी और गले लगाएगी, जैसे सिस्टम है। पर वो प्यार दैहिक प्यार में, और इस प्यार में एकदम ऐसे ऐसी इतनी ऐसे प्राप्ति जैसी अंदर आत्मा को अंदर जैसे कि बहुत बहुत अनुभूति हो रही, चाहे वो थोड़ी देर का ही होता था। उस मिलन से ही जैसे कि स्थिति में जमीन आसमान का अंतर आ जाता था, बाबा को देखने से और बाबा से मिलने से। इसलिए उन दिनों में हमें याद है जब हम ज्ञान में चले थे तो कहते थे कि ब्रह्मा द्वारा पवित्रता का वरदान, और हमारा सचमुच ही अनुभव है। इस सब्जेक्ट में हमने मेहनत नहीं की है, जैसे उनके द्वारा वरदान पवित्रता का, नहीं तो ये चीज को अंदर समझना, इस चीज को कंट्रोल करना, अपना सेल्फ कंट्रोल जिसे कहते हैं ना, नहीं वरदान। वरदान में क्या होता है, कुछ करना ही नहीं है, प्राप्ति। और आज कितना 58 ईयर से ज्यादा टाइम हो गया, 19 साल की उम्र थी, अब 77 प्लस है। मगर मैं आपको सच्चाई से बताऊं कि मुझे लोग कहते हैं भी तुम्हारी उम्र इतनी होगी, किसी को साथ भी रखा करो, है? मैं कहता हूँ क्या जरूरत है, मैं सब काम कर सकता हूँ।
सब सवार उठा सकता हूं। जैसे कि वो जो अंदर में जो है कि वो बचपन की या युवापन की स्टेज वरदान रूप में मिली हुई है। एक बार मैं ट्रेवल कर रहा था, उसमें स्लीपर क्लास में जाया करते थे, तो मैं रात को लेटा पड़ा था, एक कोई माता बहन आई, कहती अंकल जी उठ जाओ मैंने भी बैठना है। मैंने कहा मैं अंकल नजर आने लग गया। मुझे क्या अबे तो संकल्प में भी नहीं है, हमारे तो वही 19-20 साल की उम्र के आए हैं। वो जैसे वरदान, बाबा का वरदान कि जैसे कि अबे हम ज्ञान सुनाते हैं, कर्म इंद्री जीत विकर्मा जीत कर्मातीत, हम लोगों ने कभी उन दिनों में सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं होती थी, बाबा की मुरली होती थी, क्लासेस कोई होती ही नहीं थी। ये तो बाद में बाबा के व्यक्त होने के बाद क्लासेस सिस्टम शुरू हुए, बाबा की मुरली और शाम को बाबा का मिलना क्लास में, बस नथिंग एल्स। सारे दिन में बाबा कभी घुमाने पहाड़ी पर ले जा रहा है, कभी मम्मा ले जा रही है, बस जो बाबा ने मुरली चलाई उसको बैठ के थोड़ा बहुत हम कुछ। बाबा के सामने बैठे मुरली सुनी, बस सारा दिन क्या करेंगे पांडव भवन में, फिर होते तो थोड़े से थे पर सारा दिन क्या करते थे, पार्टी जो आ रही है वो बैठ गए, पार्टी जा रही है वह बैठ गए। एक ही काम होता, कोई बाबा से मिल रहे हैं, कोई बाबा से बधाई दे रहे हैं, सारे इकट्ठे हो जाते थे, थोड़े से तो थे। तो बाबा की अंदर जो अपनेपन की फीलिंग, केयरिंग। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि देहधारियों की केयरिंग तो हम लोगों ने सबने अनुभव है, अपने मां बाप का और सबका, मगर ईश्वर पिता निराकार की केयरिंग है तो साकार ब्रह्म माध्यम के द्वारा थी, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इतनी उम्र में भी मैंने देखा बाबा रात के समय पर सोने से पहले बाबा ने, तब ये बन गया था ये ट्रेनिंग सेंटर के कमरे बन गए थे, जब हम बाद में फिर आते रहे, बाबा बच्चों के पास रात को चक्कर लगाता था, ये मेरे बच्चे कंफर्टेबली आराम से रह रहे नहीं तो सोएगा ही नहीं। बाबा रूम में जाता था पर्सनल सोने से पहले देखने के लिए, और ये हमने दादी प्रकाशमणि की नेचर देखी, कमाल उठा। बाबा की पालना ली हुई थी ना। 87 में जब संत सम्मेलन किया, मुझे उस दिन याद रहता है, सब आके ठहर गए सुखधाम में, दादी ने बुलाया मुझे हरिद्वार के महामंडलेश्वर, दादी कहती आ गए, मैंने आ गए 10:45 का टाइम, कहती मेरा विचार है मैं उनके कमरों में अभी जाऊं मिल दे 10:30 रात को, क्यों कंफर्टेबल हैं। मैंने कहा दादी ये संत लोग हैं, ठहर जाओ मैं पहले जाता हूं, पता नहीं कैसे बैठी हुई। कहती दीदी जाओ मेरे जा रहे हैं। और जब मैंने उनको कहा दादी आ रही है मिलने के लिए, वो कहते हैं चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, कहते किसी को, दादी जब गई उनकी आंखों में कईयों के पानी आ गया, दादी जी आप क्यों आए, हम कंफर्टेबल है। नहीं नहीं भाई मैं, मुझे मुझे पता लगे ना आप ठीक ठाक हैं, घर में आए हैं बाबा के घर में, इसलिए मैं खुद देखने के लिए आई हूं। कहती दादी आप किसी को भेज देते, कितने और हमारी केयर कर रहे हैं। कहती नहीं, ये दादी की नेचर थी, मैंने देखा संस्कार था पालना का, बहुतों को अनुभव है दादी का, ऐसे बाबा का ये था। अभी आपको 2-3 अनुभव की बातें, व्यक्तिगत भी और बाबा की केयरिंग की। प्यार तो लौकिक में भी माँ बाप करती है, मैंने आपको सुनाया, मगर ऐसी प्यार की पालना जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा और दादियों के द्वारा दी, ऐसे दुनिया में कहीं नहीं है, है ही नहीं। अब उन दिनों में हम लोग
छोटे ग्रुप होते थे तो बीच बीच में हर एक ग्रुप को बाबा के साथ भोजन करवाते थे, कई बार दो बार, कई बार एक बार। अब भोजन करना तो अच्छा, तो भोजन बाबा तो बैठ करके अपने कमरे में वहीं बाबा करते थे, मगर बाबा भोजन कराने का, बाबा के साथ भोजन करने का तरीका ही अलग था। बाबा भोजन खुद करते शुरू ही नहीं करते थे, पहले जितने सामने बैठे हुए हैं उनको बाबा का जो भोजन बाबा के लिए आता था उसमें छोटी सी ग्राही बना करके हर एक बच्चे को बुलाते थे, गोद में लेते थे, उसके मुख में डालते थे। कभी ऐसे माँ बाप ने भी ऐसी पालना नहीं की, बड़े प्यार से, जैसे कि उसके बिना बाबा नहीं खाएगा। अभी दादी जान की दो दिन पहले सुना रही थी कि मुझे वो दिन याद आते, भूलता नहीं है कि एक बार बाबा के साथ खाने खाने के लिए बाबा ने बुलाया तो बाबा ने क्या कहा, बच्ची मैं तुझे खिलाता हूं तो मुझे खिला। आप अंदाजा लगाओ, आप देखिए, आपने मिलकर के किसी साथ भी खाना खाया होगा टेबल पर किसी के साथ, ऐसे कौन करता है, ऐसे कोई करता है? और कोई हम छोटी उम्र के थोड़ा है, एक छोटे बच्चे को खिलाना तो अलग बात है, बच्चे को तो माँ बाप खिलाते ही, मगर बाबा हमें भी छोटा ही देख रहा है। ये है रूहानियत, हमारे शरीर की भास रही ना हमें रहती थी ना बाबा को रहती थी। बड़ी बड़ी उम्र वाले भी जो है वो भी बाबा की गोद में ऐसे जाते थे जैसे बच्चे। कल भी एक माता मिली वहां निर्वैर भाई के पास, किसी जगह से आई हुई थी, कहती जब से ज्ञान में आई हूं ना, बड़ी उम्र की थी, 60 साल की होंगी मैं समझता हूं, कहती मैं मुझे 60 साल भूल ही गए, मैं तो बच्चा हूं, 4-5 साल की हूं। मुझे कहती सारा दिन यही भाषणा रहती कि मैं 4-5 साल की हूं। तो क्या चीज है ये, बाबा ने ऐसा अनुभव करा दिया। एक प्रेम बहन ने सुनाया हमें, जो देहरादून वाली है, उनको खांसी हो गई, 16-17-18 साल की थी जब वो ज्ञान में आई, फिर बाबा के पास आ गई यहां पर, तो खांसी उसकी जाती नहीं थी, अभी भी उसको तकलीफ थोड़ी कई बार होती है। तो कहती बाबा को पता लगा कि इसको खांसी है, बच्ची को बुलाया, मैं तेरा इलाज करता हूं, देखना तेरी खांसी ठीक हो जाएगी। कहती बाबा ने शहद मंगवाई, अपने ऐसे हाथ में शहद रखा, उसमें कोई चीज मंगवाई जो खांसी के लिए, शहद के साथ अपनी उंगली से ऐसे ऐसे किया, और फिर कहता वो उंगली मेरे मुंह में डालता रहे बाबा, आप अंदाजा लगाओ। और वो 17-18 साल की थी, छोटी थी, कि उसको कहते कैसे करके, चलो तू उस शहद के साथ ये दवाई खा लो, वो खा सकती थी। पर आप ये देखिए इसमें पालना, उसको वो चीज भूलती नहीं है, प्रेम बहन को कहती है कि मैं इतनी सेंसिटिव नेचर की थी कि मेरे मुंह में को उंगली डाले मेल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और उस समय मैं उस मेल फीमेल के चक्कर में ही नहीं थी, आत्मिक स्थिति, रूहानी स्थिति, ये मेरा बाबा है। भूल ही गई कि मेरी उम्र क्या है, क्या हूं मैं, जैसे छोटे बच्चे की तरह बाबा मुझे वो खिला रहा है, अंदर खांसी के लिए मैं खा रही हूं। ऐसे मम्मा ने की बहुत सी बातें हम सुनते हैं मम्मा की, मगर मम्मा जितनी आज्ञाकारी थी और निश्चय बुद्धि थी इसकी कोई मिसाल ही नहीं है। हम सारे निश्चय बुद्धि कहते हैं अपने आप को, तो उसकी एक बात सुनाता हूं, और भी 2-3 बातें सुनाऊंगा, उनकी निश्चय बुद्धि की बात सुनाता हूं। उन दिनों में जो पार्टी कोई और आती थी तो अंदर जो जगह है उसी में अकोमोडेट करते थे, तो 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, इतने आते थे। तो एक बार पत्थर आ गया कि 3-4 आने वाले हैं, जगह थी नहीं, खटिया थी नहीं, तो मम्मा बाबा दोनों चले अंदर, कहां और कोई खटिया एडजस्ट हो सकती है। तो साथ प्रेम बहन भी थी, तो बड़ा वो हाल है अंदर, अभी तो उसकी पोल्ट्री
प्रोपोर्शन हो गए हों उसी बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग में। तो बाबा कहता है, मम्मा ये जो बड़ी खटिया है ना, इसके नीचे ये छोटी खटिया आ जाएगी, तो इसको दिन में डाल दिया करो और रात को पैसेज में डाल दिया करो, तो एक तो एक्स्ट्रा और सो जाएगा ना। तो प्रेम बहन साथ थी, प्रेम बहन थोड़ी सी इंटो बुद्धि की तेज है, वो कहती बाबा ये खटिया नहीं आएगी बड़े के नीचे। बाबा कहता अच्छा ट्राई करके देखो, ऐसे बाबा ने लाइटली कहा, नहीं बाबा ये नहीं आएगी। अच्छा बाबा ने कहा अच्छा ठीक है चलो, चले गए चक्कर लगा के और जगह सेट कर दी। बाद में मम्मा ने प्रेम बहन को बुलाया कि आपने बाबा को क्या कहा था, कहती वो बड़ी खटिया के नीचे डाल के देख लो नहीं आएगी। मम्मा ने क्या कहा देखो, ये देखिए मम्मा की बात। मम्मा कहती है हम बाबा के सामने ऐसा नहीं बोलते हैं, हम खटिया डाल के देखेंगे आएगी या नहीं आएगी कोई बात नहीं, बाबा को हम नहीं कहते हैं, उस वक्त साइलेंट रहना होता है। तो कहती है मैंने कोई गलत बात तो की नहीं मम्मा, कहती नहीं ये संस्कार है कि मेरी बुद्धि बाबा से बेटर है, ये संस्कार कहां ले जा सकता है, हमें अपनी बुद्धि को उस लेवल तक रखना है बड़ों के कि अपनी बुद्धि उसके अंडर चले, उसके अनुसार चले। ये मम्मा की पालना, बाबा को बाबा ही समझ के चलो बस। कभी भी अंदर अपने आप को इतना इंटेलिजेंट ना समझो कि बाबा से हमारी बुद्धि बेटर है, नहीं तो किसी समय पर कुछ और संकल्प भी आगे चल सकते हैं। ये मम्मा की धारणा की बातें आपको सुनाता हूं, ऐसे बाबा की दूरदृष्टा की बातें सुनाता हूं आपको एक दो, कि बाबा ऐसा उल्ली में तो आप सुनते ही हैं। बाबा उन दिनों में ये जो कॉटेज बनी हुई है, जब मैं एक बार आया बाबा से मिलने के लिए, हम आते थे साल में एक बार मुश्किल से, क्योंकि वो भी गर्मियों में, यहाँ की बरसात भी बहुत तेज होती थी और विंटर भी बड़ा जंगल होता था। ये जो मधुबन पांडव भवन है, यहाँ का ये गेट जिसमें हम एंट्री करते हैं, ये लकड़ी का गेट लगा हुआ था, हम इधर से कभी नहीं आते जाते थे। और उस दिन उन दिनों में ये टैक्सियां वैक्सियां गाड़ी गाड़ी होती नहीं थी, पीछे जो किचन से रास्ता नीचे को जाता है उधर से हम आते थे, उधर से ही जाते थे अपना सामान उठाते हुए। और बाबा वहां जो पेड़ बड़ा एक है पेड़ है, वहां तक बाबा विदाई देने जाते थे। तो उन दिनों की बात आप लोगों को सुना रहा हूं कि एक बार मैं आया तो ये जो कॉटेज बनी हुई है बाबा की झोपड़ी, ये बड़ी सिंपल थी, बहुत सिंपल थी, जैसे मटेरियल जो मिल जाता है ना ऐसे जंगल वंगल में, उसकी बनाई गई थी बाबा को। दिन में बाबा वहां लेट भी जाते थे, बात भी करते थे, जब थोड़ी गर्मी होती थी मई जून में। तो जब मैं आया एक बार बाबा से मिलने लास्ट 68 में, तब मैंने बाबा को समाचार सुनाया था कि मेरी ट्रांसफर चंडीगढ़ हो गई है और मेरी पोस्ट थोड़ी अच्छी हो गई है। तो बाबा ने बुलाया मुझे कॉटेज में, मगर उस समय पर चंडीगढ़ में कोई सेवा ज्यादा नहीं थी, थोड़े से हम भाई बहने थे। तो उस समय पर बाबा को ये पता था कि ये कैपिटल टाउन है चंडीगढ़, बाबा गए नहीं है चंडीगढ़, और पेपर से बाबा को वैसे समाचार तो सुनते थे। तो बाबा ने जब पता मुझे सुनाया कि बाबा मैं चंडीगढ़ पहुंच गया हूं, तो बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है बच्चे, वहां एक कोठी लो अच्छी सी कोठी और उसमें म्यूजियम बनाओ, बड़ी सेवाओं की कैपिटल टाउन है, बड़े बड़े हाई कोर्ट हैं, मिनिस्टर्स हैं, बहुत लोग वहां, बहुत चंडीगढ़ सेवा होगी। अब मैं बैठा हुआ था, बाबा लेटे हुए थे, बाबा सुना रहे थे, मैंने ये अनुभव भी लिखा है
एक दो जगह बाबा सुना रहे थे, मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। छोटा था मैं तब, मेरी उम्र फिर भी मैं 30 के लगभग थी। मैं बाबा क्या कह रहा है, वहां मकान का किराया देना मुश्किल है, और बाबा कहता कोठी लो म्यूजियम बनाओ। मेरी आंखों में, मैंने कुछ बोला नहीं, मेरी आंखों में आंसू निकले होंगे। बाबा ने देखा, बाबा लिटा हुआ था, उठ गया, उठ करके मुझे गले लगा लिया, बहुत प्यासे अंदर, बहुत अनुभव कराया। फिर दृष्टि देके कहता है कौन कह रहा है, ऐसे बाबा कौन कह रहा है। मैंने कहा बाबा, बाबा का नहीं, सब बाबा करेगा, सब प्रबंध हो जाएगा, आप नहीं सोचो कौन करेगा, आप अपना नहीं सोचो, बस जो बाबा ने कहा करो। बाबा किसको भी निमित्त बनाएगा, और सचमुच बाबा ने किया। फिर उसके बाद अचल बहन थी हमारी दूसरी जगह पर, उसको बाबा ने भेजा। मैं फरवरी 68 में चंडीगढ़ आया, मई 68 में बाबा से मिला, अगस्त 68 में फिर अचल बहन वहां आ गई। और बिजमन भाई नंगल में थे तब, जो आजकल दिल्ली में है, और मोहिनी बहन जी जिन्होंने अभी कुछ समय पहले शरीर छोड़ा, ये दोनों नंगल में रहते थे। बाबा ने उनको लिख दिया, हमें पता ही नहीं, वो हर वीकेंड पर आने लग गए दोनों ही। सारा कार्य हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये था बाबा का। बाबा विजुअलाइज करता था कि ये सेवा यहां पहुंचे। आज हम देखते हैं चंडीगढ़ की सेवा को, मैं देखता हूं बाबा को सामने, बाबा के उन शब्दों को, वर्ड्स को याद करता हूं। बच्चे बहुत सेवा होगी, अब देखो वहां कैंपस देखो चंडीगढ़ का, कितनी हमने एक जगह बनाई, फिर दूसरी जगह बनाई, जोनल हेडक्वार्टर, कितना बड़ी सेवाओं का कारोबार चल रहा है वहां पर। ये किसका विजन था, हम सोच ही नहीं सकते, संकल्प भी नहीं कर सकते कि अपने भवन कभी बनाए जाएंगे, हम तो सोचते ही नहीं थे। बाबा का विजनरी बाबा था, दूरदर्शी एकदम। इसलिए बाबा ने ऐसी ऐसी जो बातें कही, एक बार मुझे याद है हिस्ट्री हॉल में क्लास के बार बाबा आया, हम भी सब खड़े थे, तो बाबा बड़े नशे में बोला, हम 10-12-15 होंगे, बच्चे ये ब्रह्मा बाबा एक ही है शिव बाबा का बच्चा, तुम तो उसके द्वारा मेरे द्वारा अडॉप्टेड हो। बाबा को नशा रहता है, मैं ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का अकेला बच्चा हूं। हमने कहा बाबा हमें भी नशा रहता है। क्या नशा रहता है, हमारे जैसे भी कोई नहीं दुनिया में ढूंढ के ले आओ, जो बाबा की आज्ञा पर एकदम चले, समर्पित हो जाएं, हमारे जैसे कौन है, आपके बच्चे कौन है दुनिया में, और कोई है, जो बाबा कहे बस। क्योंकि उन दिनों में किसी की परवाह नहीं थी, किसी की परवाह नहीं। हमें याद है जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, व्यक्त हो गए यहां 24 जून 65 को, तब टेलीग्राम गई, मनोहर दादी थी, हम थे करनाल में, मनोहर दादी ने कहा ये टेलीग्राम आ गई है, मैं तो जाऊंगी। मैं कहा मैं भी जाऊंगा, मैं जॉब करता था, साइकिल था मेरे पास, सीधा अपने अफसर के घर चला गया सवेरे सवेरे, और उसको लेटर लिख के दिया, मेरी मदर ने शरीर छोड़ दिया है, तो जाओ 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 जाओ। ये हम सोचा ही नहीं कि वो कोई हमारी अलौकिक माँ है, नहीं हमारी माँ है ना, माँ सोच संकल्प भी नहीं आता था। लौकिक माँ बाप से भी ज्यादा हम लोग, हमारे यही है सब कुछ, ये माँ है ये बाप है, जैसे ये फीलिंग अंदर पालना के अंदर, वो तो जैसे ऐसे निमित्त मात्र है, संबंधी निमित्त मात्र हो गए हमारे लिए, मगर बाबा की पालना ने इतना स्ट्रांग बस। तो इसलिए बाबा की पालना इतनी शक्तिशाली, बाबा
की स्टेज बच्चों के लिए होती थी। आप देखिए सारे सिंध का सबका जो समाचार आपने सुने होंगे, अकेला बाबा कैसे फेस किया सारे चैलेंजेस को, समाज को, सबको। है तो बाबा था ना स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए बाबा के कम नहीं है। इसलिए बाबा कहता ये नेक्स्ट टू गॉड, ब्रह्मा बाबा कम नहीं। उनके द्वारा जो अभी हम आज का योग देखते हैं और बाबा मामा के टाइम का योग देखते हैं, मामा बाबा आते थे जब क्लास में मुरली से पहले, बाबा ऐसे सामने जब बैठ के दृष्टि देता था, जिस पर दृष्टि पड़ गई वो एकाग्र हो गया मन, शक्तिशाली, निराकार, निराकार से दृष्टि। इसलिए ब्रह्मा बाबा बहुत, इसलिए अभी तो फाउंडेशन मैंने कहा ना बाबा ने तैयार किया, नो कंप्रोमाइज। और बाबा जो मर्जी वाणी में बोल देता था। 62 में चाइना की जब लड़ाई हुई, ये हुई, कुछ ऐसा हुआ, पाकिस्तान का कुछ हुआ एक दो बार, तो बाबा ने मुरली में कुछ कह दिया, अरे टुकड़े के लिए क्यों लड़ते हो, कितने लोगों की जाने चली जाती है, गवर्नमेंट के लोग आ गए यहां पर, ये क्या बोला है? बाबा से मिले, बाबा ये तो नहीं है, ठीक नहीं बोला। हाँ बच्चे, शिव बाबा बोलता है, मैं उसको कह दूंगा मुझे भी पता इतना बाबा निमित्त इंस्ट्रूमेंट रहते थे, जैसे कि बाबा है ना, है तो है भी बाबा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। अब शिव बाबा तो कुछ भी आकर के बोलेगा ना, वो तो सारी आत्माओं का पिता है ना, उसके लिए तो ये अलग अलग टुकड़े तो हम लोगों ने बनाए हुए हैं ना, बाबा की तो सारी आत्माएं बच्ची है ना। इसलिए ये चीज समझने की है, सबके लिए एक जैसा ज्ञान सबके लिए, नहीं तो बाबा ने सोचा। विदेशों की जब सेवा शुरू हुई, मैंने सुना है, तो मैंने उस दिन कहती थी वहां प्योरिटी ये चीजें तो वो समझते ही नहीं है, मगर अब वो प्योरिटी के कारण ही यहां आ रहे हैं। बाबा ने कहा नहीं, शिव बाबा की बात सबको समझ में आ जाएगी। मैं जब विदेशों में गया, मैंने जाके उनकी सेक्रीफाइस देखी, कैसे बाबा के लिए उनका प्यार है, अव्यक्त पालना। एक जगह पर मैं गया, क्या बाबा का कमरा, अव्यक्त बाबा का कमरा बनाया हुआ है, और खुद ऐसे रह रहे हैं जैसे थ्री टायर में रह रहे बाबा के लिए। कितने बाबा के बच्चे हैं जिनको अपना कुछ नहीं है। इसलिए ये जो बाबा ने, अकेले बाबा ने इतनी माताओं बहनों को रखना, पालना देना 14 साल तक, ये कोई साधारण बात है। इसलिए और बाबा की पालना के भी विचित्र अनुभव बाबा ने जैसे कराए हम भी। मुझे याद है, कुछ छोटी सी बात सुना के पूरा करता हूं। मैं जॉब करता था उन दिनों में, जब बाबा किस मिलने आते थे और ट्रेन में जाना होता था, टैक्सियां वैक्सियां नहीं होती थी, बस जाती थी। तो एक बार मैं आया और मैंने जल्दी जाना था, 2-3 दिन की छुट्टी मिली थी, तो फिर बाबा की मुरली चलती थी, बस का टाइम बीच में हो गया। तो बाबा को पता था, समाचार था, तो बाबा के किसी ने कान में कहा कि हम सामने बैठे होते थे थोड़े से, तो बाबा इसने जाना है, अभी बस का टाइम होने वाला है। बाबा ने हाँ आओ बच्चे आओ, क्योंकि बाबा गोदी में बिना विदाई देने का सिस्टम ही यही था, बाबा अपनी गोद में चाहे खड़े खड़े चाहे बैठे। तो बाबा मुरली चला रहा था, अब बाबा ने मुझे गोदी में ऐसे, मैं जैसे बाबा की गोद में विदाई ले रहा हूं और बाबा ने मुरली शुरू कर दी। बाबा को पता ही नहीं कि मैं गोदी में हूं मुझे भी अच्छा लग रहा। आवाज 7 मिनट के बाद बच्चे ऐसे करके किया, मगर मैंने समझा कि ये बाबा ने शक्ति भरने के लिए, इसमें भी रास है। एक सेकंड का मिलन भी कितनी ताकत देता है, और ये तो 5-7 मिनट बाबा ने अपने साथ। इसलिए बाबा ने क्या पालना की और कैसे पालना की, एक-एक की कितनी ताकत से पालना दी, वो बाबा के अनुभव मैंने कुछ आपसे शेयर किए। ठीक है, ओके। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। भाई जी ने तो आप सबको एकदम बाबा के पास पहुंचा दिया, बाबा की गोदी में बिठा दिया। बाबा के सब भाई बहने बैठे रहेंगे 5 मिनट के लिए, डायरेक्शन सुन करके जाएंगे और बाबा के साथ के अनुभव करा दिए। आपके पास तो इतने अनुभव हैं। बैठो 5 मिनट है, बस गीते बस कुछ पूरा करें। आपके पास तो इतने अनुभव है, इतने अनुभव जितने सुनते जाओ उतने ही कम हैं, और लगता है कि हम बाबा के पास पहुंच गए हैं। तो कल तो अव्यक्त दिवस है, कल प्रातः अमृत वेले का योग यहाँ ओम शांति भवन में ही रहेगा, और कल प्रातः मुरली क्लास के लिए रतमन दादी जी आएंगे, मुरली सुनाएंगे, और उसके बाद प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा, भोग के बाद बाबा का संदेश। और उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि सभी भाई बहने शांति स्तंभ पर वहाँ खड़े होंगे और एकत्रित होंगे, और दादियाँ ओम शांति भवन के बाबा के कमरे से होकर के आएंगे। शांति स्तंभ पर खड़े होकर के हम सभी मिल करके प्यारे बाबा की याद में वहाँ पर खड़े होंगे, और उसके बाद दादियाँ बाबा के कमरे में और बाबा की झोंपड़ी में जाएंगे, और कुछ भाई बहने वहाँ बाबा के कमरे और झोंपड़ी में दादियों के बाद जाएंगे, और तब तक अन्य भाई बहने नाश्ते के लिए जाएंगे। कल जो भी आएंगे सबका नाश्ता यहाँ होगा। ज्ञान सरोवर से भी सभी भाई बहने मुरली क्लास के लिए यहाँ पर आएंगे और उनका नाश्ता भी यहाँ रहेगा। और दोपहर को 10 बजे पांडव भवन में और ज्ञान सरोवर में योग का कार्यक्रम, और 10:30 बजे के बाद दोनों स्थानों पर बाबा को भोग लगाया जाएगा, और तीनों स्थानों पर दोपहर को ब्रह्म भोजन है। और साथ साथ एक बात आपको सुना दें खुशखबरी, हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी इतनी देरी से शाम को 6 बजे के बाद अहमदाबाद से शांतिवन के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन डॉक्टर्स क्या कहते हैं, शरीर कमजोर है आत्मा शक्तिशाली है। और डॉक्टर्स ने एडवाइस भी दिया है कि ज्यादा समय नहीं बैठेंगे, कल बाप दादा तो आएंगे ही लेकिन बाबा का समय थोड़ा होगा, और नीचे शांति वन में भी लगभग 25,000 के करीब भाई बहने आए हुए हैं। तो इसलिए मधुबन निवासी सेवाधारी और ज्ञानसर के सेवाधारी ज्ञानसर निवासी डबल विदेशी सब नीचे जाएंगे ही, लेकिन जो अन्य भाई बहने हैं यहाँ बैठ करके बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे, क्योंकि बाबा भी थोड़े समय के लिए आएंगे, लेकिन बाबा तो बाबा ही हैं, कितना समय लेते हैं, तो इस बात का आपको पहले से जानकारी दे रहे हैं। और अभी हम सभी प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे, और हल्दर भाई बाबा के स्नेह के एक बहुत सुंदर बाबा की यादों का गीत गाएंगे। और फिर से आपको बता दें कल फिर दोपहर को भोग शांतिवन, तीनों स्थानों पर भोग लगता है, तो दोपहर को भोग लगेगा शांतिवन में, और शाम को 5 बजे के बाद जैसे 3 बजे से डायमंड हॉल के गेट खोल दिए जाते हैं, सब भाई बहने बैठेंगे, प्यारे प्यारे बाप दादा का हम सब आह्वान करेंगे। फिर से बता रहे हैं कि बाप दादा आएंगे थोड़े समय के लिए, सब बच्चों को मिलेंगे, वरदान देंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए होगा, तो इसलिए सभी को भी जैसा जो यहाँ है यहाँ बैठकर देख सकते हैं, जो ज्ञान समय सेवाधारी यहाँ के सेवाधारी भाई बहने यहाँ बैठ करके भी देख सकेंगे। अभी हल्दर हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और हल्दर भाई बाबा की यादों का स्नेह भरा गीत गाएंगे।
ओ बाबा ये जहां तुमको कभी न भूल पाएगा। बाबा ये जहाँ तुमको कभी न भूल पाएगा, ओ बाबा ये जहाँ तुमको कभी न भूल पाएगा। सम्मान बाबा संग इतना मात्र शक्तियों को है नतमस्तक ये जग सारा शुभ शक्ति ब्रह्मा कुमारियों को दिया सम्मान बाबा संग इतना मात्र शक्तियों को है नतमस्तक ये जग सारा शुभ शक्ति ब्रह्मा कुमारियों को। मेरा बाबा मीठा बाबा हर दिल गाता है गाएगा, ओ बाबा यही जहाँ तुमको कभी न भूल पाएगा, ओ बाबा यही जहाँ तुमको कभी न भूल पाएगा, ओ बाबा यही जहाँ तुमको कभी न भूल पाएगा।